أستغفر الله به وأتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، دو چیزیں ہیں، ایک چیزیں ہیں اور ایک حرکتیں ہیں.
One is one of the things, and the second is actions.
چیزیں چاہے نظر آتی ہوں یا نظر نہ آتی ہوں.
Either things can be seen or unseen.
چاہے وہ سفلی ہوں، ارضی ہوں، زمین اور متعلقات زمین سے تعلق رکھتی ہوں، یا آسمانوں اور آسمانوں سے متعلق ہوں.
Either they are from the earth or they are related to the heavens. It could be both.
چیزوں میں جو علم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے.
And the things which we have made from the things is that the creator of all the things is only Allah subhanahu wa ta'ala.
اور جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے.
And the creator is the owner also.
اس لیے ہر شے کا مالک اللہ پاک ہے.
So basically the ownership belongs to Allah.
جو مالک اور خالق ہوتا ہے وہی حاکم ہوتا ہے.
So the owner and the creator is also the ruler.
جو خالق و مالک اور حاکم ہوتا ہے رب بھی وہی ہوتا ہے.
The one who is the owner, who is the ruler and who is the creator is also the sustainer.
اور جو یہ چاروں صفات کسی صفات رکھنے والا ہوتا ہے وہی لائق عبادت ہوتا ہے.
So the one who has all of these four qualities, he is the one who needs to be worshipped.
چونکہ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ چاروں صفات جمع نہیں ہوتے، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہوتا.
So nobody has all of these four qualities, so there's no one worthy of worship except Allah.
اس لیے لا الہ الا اللہ. الہ الہ کا ترجمہ سہولت سمجھنے کی سہولت کے واسطے لائق عبادت بول کے کرتے ہیں.
الہ means the deity.
نہیں نہیں، الہ کا ترجمہ سمجھنے کی سہولت کے لیے لائق عبادت سے کرتے ہیں.
So that we to understand, which means that the one who is worthy of worship.
ہاں، اصل معنی اس کے الہ کے وہ نہیں ہے.
Is not the actual meaning of ilah.
Ilah majmua hota hai in sifat ka.
Ilah means who is composed of all of these qualities.
Woh chunki Allah ke alawa kisi mein nahi hote, isliye Allah ke alawa kisi par ilah ka lafz nahi jamta.
Because all of these qualities does not compose of any individual, so nobody can be except Allah subhanahu wa ta'ala who has all of these qualities.
Rububiyat koi aasan cheez nahi hoti.
Being a sustainer is not something easy.
Itni mushkil cheez hai ki wo Allah ke alawa koi kar hi nahi sakta.
So difficult, only besides Allah nobody can do it.
Kisi ke parze mein nahi hai cheez.
Nobody has a control on it.
Uske andar jo cheeze hua karti hain, بعض چیزوں کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ سوائے اللہ کے کسی میں جمع کرنا مشکل ہے ان کو. ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس میں سے کچھ کا بھی اندازہ ہو جائے تو بہت ہوتا ہے.
It is composed of many things. I mean, it is composed of many things, but only a few of the things, if we understand, then we can imagine what it means actually.
जिस चीज का रब होता है उस चीज को पहले कायम रखना होता है.
The one who is a sustainer, he needs to sustain that.
नहीं चीज को रखने को सस्टेन बोलेंगे. इसी वजह से अल्लाह पाक ने कय्यूम का लफ्ज अपने लिए अपनी सिफत बनाई है. अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम.
सो अल्लाह सुभान व तआला इज द कय्यूम. ही इज द वन हु इज मेक द वन हु इज यू कैन यूज द वर्ड सस्टेनर आल्सो.
कायम रखने वाला.
द वन हु इज हु होल्ड्स द होल थिंग.
और फिर उसके बाद में उसकी जो जरूरतें हैं उनको जानना.
देन एट द सेम टाइम आफ्टर दैट अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ दैट थिंग.
अब जितनी मखलूक है उनको कायम रखना और जितनी मखलूक है उनकी जरूरतों को जानना.
सस्टेन ऑल द क्रिएशन एंड देन टू नो देयर नीड्स.
चाहे वो आसमानों में हो, जमीन में हो, समंदर में हो, दरियाओं में हो, पहाड़ों में हो, जंगलों में हो, कहीं भी हो, आसमानों में हो.
Is either in the heavens, on the earth, on the land, on the water, on the mountains, wherever it is, he needs to control all of that.
चाहे वो जानदार हो चाहे बगैर जानदार हो.
Either they're alive or non-living things.
क्योंकि रुबूबियत सिर्फ जानदार की नहीं होती, रुबूबियत गैर जानदार की भी होती
है. Because the sustainer does not only also is only the things which are alive, it means also the things which are non-living things too.
जितने यहाँ जितने हम सब बैठे हुए खाली हमारे रब अल्लाह है ऐसा नहीं होता.
It's not that he is the sustainer of only the ones which are over here sitting.
ये छत है तो इसका भी रब अल्लाह ही होता है.
Ceiling, the sustainer is also Allah.
क्योंकि अगर छत का रुबूबियत अल्लाह नहीं करेंगे तो वो हमारे सर पे गिरेगी.
Allah subhanahu wa ta'ala is not the sustainer, then this ceiling would fall on us.
अब इससे चीजें जितनी लगी हुई है उन सब का भी रब अल्लाह है.
Things which are attached to the ceilings is also the rab is Allah.
छत में जितनी चीजें शामिल की गई हैं उन सब का भी रब अल्लाह है.
Things which are attached to the ceiling, the sustainer is also Allah.
Zameen ka bhi rab Allah hi hai.
And the sustainer of the earth is also Allah.
Hamare wali sahab rahmatullah ke farmaya karte the ki ye jo carpet hai is pe bhi dhyan dene ki zarurat hoti hai, iska bhi rab Allah hai.
So my father used to say that this carpet needs to also contemplate on that because the sustainer of this carpet is also Allah.
इसलिए कि कारपेट एक छोटी चीज का नाम नहीं है. दुनिया में एक ही कारपेट नहीं है.
Carpet is not a small thing. It is not only one carpet.
कारपेट का एक आलम होता है पूरा.
Complete, you know, system of
carpet. World. World. It's worldwide. एक आलम होता है इसलिए रब्बुल आलमीन है वो.
That's why he is Rabbul Alameen. He is the Lord of all the universe.
तो चाहे जानदार चीजें हों उनका भी रब अल्लाह और बेजान चीजें उनका भी रब अल्लाह.
Allah is the Rabb, I mean the sustainer of the things which are living and the things which are non-living.
तो उनकी ज़रूरतें क्या है उनको जानना.
To understand the needs of them.
और फिर उन हर चीज़ अलग है तो उसकी ज़रूरत भी अलग है.
Because each thing is different, the needs are also different.
ज़रूरत में बाज़ मर्तबा मांगना होता है बाज़ मर्तबा नहीं मांगना होता है.
In the need, sometimes you need to ask, sometimes you don't need to ask.
और नहीं मांगना भी अल्लाह के पास मांगना होता है.
And not asking is also considered as asking in front of Allah.
इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुम, जो कुछ तुमने मांगा वो हमने तुम्हें दिया है.
There's a reason Allah subhanahu wa ta'ala says, I've given you the things which you asked for.
हमने कब मांगा था?
We never asked.
हमारी तो कभी उनसे बात ही नहीं हुई.
We never had talked with Allah.
मगर हमने मांगा है.
We have asked Allah.
हाँ, हमने बहुत कुछ मांगा है.
We have asked Allah many things.
हमने इतनी चीजें मांगी हैं कि हम गिन नहीं सकते उनको.
We have asked so many things that we can't even count.
और उन्होंने हमें दी हैं.
He gave us.
कुरान पाक का बयान है, वो तो गलत नहीं हो सकता ना.
Allah is saying in the Quran.
वाताकुम बिल्कुल नहीं मा साल तुमको, जो तुमने मांगा है वो हमने दिया है तुमको.
Whatever you asked, we gave it to you.
इसलिए कायनात के जर्रे जर्रे ने मांगा है.
Each atom of the whole universe asked.
और मांगता है.
They're asking.
और मांगता रहता है.
They'll keep on asking.
और मांगता रहेगा.
They'll keep on continue asking.
और वो देते हैं.
And he keeps on.
इसी का नाम रुबूबियत है.
This is called the rububiyyat.
अब ये उनकी जरूरतों को जानना कि वो क्या मांग रहा है.
Thing is to know what they want.
फिर दूसरे उसकी मसलहत को जानना कि जो वो मांग रहा है उसको देने में मसलहत भी है क्या नहीं है.
And the second thing is to understand the thing which she's asking, is that beneficial for that individual or not?
ये तो छोटा बच्चा भी किचन में आके अम्मा से नाइफ मांगता रहता है.
Like for example, you know, a small kid also comes in the kitchen and asks the mother knife.
हाँ, सालन में गरम गरम सालन बना हुआ है, वो उसमें से कोफ्ता निकालना चाहता है, वो भी मांग रहा है.
You know, it's burning hot, the food, and he wants to get the kofta from there. It's hot.
क्या माँ दे देती है उसको?
Does the mother will give it?
माँ को मालूम है कि क्या हो, क्या मांग रहा है, लेकिन क्या उसको देना है, क्या नहीं देना है?
So mother knows what he's asking, but mother knows what to give, what and what not to give.
इसको कहते हैं मसलहत जानना कि इस मखलूक की इस मांग में क्या मसलहत है.
So to understand what they want, this is also from Allah Subhanahu wa Taala.
तभी तो हमारी हर बात नहीं सुनी जाती.
Not everything which we ask for.
हम दुआ कर रहे हैं वो सुनते ही नहीं.
So we are asking, is not giving us.
उलमा ने फरमाया वो सुनते हैं.
उलमा से दे
वो कबूल भी कर लेते हैं.
And he accepts.
मगर वो तुमको न देना ही कबूल करना है उसका.
Because not giving is actually acceptance from Allah.
इसलिए कि अगर दे दे तो नुकसान होगा, तो नुकसान से बचाने के लिए नहीं दे रहे, जैसे बच्चे को चाकू नहीं देते.
Because if he gives it to you, you will have issues, and that's the reason like the mother does not give the knife, because it's going to hurt the baby.
और तीसरी बात उसके साथ ये, चौथी बात उसके साथ ये होती है कि जो मसलियत है उसको जानने के बाद जो मखलूक की वो जरूरत है, उसकी जो मांग है, वो होना देने के लिए मेरे पास कुछ होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो कैसे लाके दूंगा.
The other thing is that a person who's asking, you need to have it to give it to them. If he doesn't have it, how will you give?
और दूसरे ये कि चीज तो है किसी के पास, लेकिन ताकत होना उसको उस तक पहुंचाने की.
Provide it to that individual.
बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आपके पास एक चीज़ है और आप जानते हैं कि आपके ताल्लुकात वालों में फलां को फलां चीज़ की ज़रूरत है.
A lot of times you have things and you know that somebody who you know they need it.
और मगर आप नहीं पहुंचा सकते क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है.
The thing is you can't give it to them because you don't have the power to, you know, deliver.
उसके बाद एक और चीज़ चाहिए.
There's something else which you need.
वो ये है कि इरादा भी होना उस चीज़ को देने का.
The other thing is that you need to have the intention to give.
बहुत से लोगों के पास बहुत सी चीजें हैं, वो दे भी सकते हैं, पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन इरादा ही नहीं करते हैं.
A lot of times they have the capacity to have it, and they also have the capacity to deliver, but they don't have the intention to give.
एक रुबूबियत का अमल वजूद में आने के लिए इतनी चीजें हैं.
This sustainership to come into reality, all of these things are needed.
इसमें से कोई एक चीज अल्लाह के अलावा किसी के पास भी नहीं है, चजाए के इतनी सारी चीजें.
From all of these things only the whole belongs to Allah Subhanahu wa Taala. Nobody has none of these things.
इसलिए अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं हो सकता.
As the reason, besides Allah, nobody can be as a Rabb.
इसलिए जहाँ से जिसका काम होता हुआ नजर आता है, उसके पीछे अल्लाह ही होता है.
So whatever things gets done, behind it is actually Allah Subhanahu wa Taala.
और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आता है कि अल्लाह के अलावा किसी और को रब माना जाए.
So the reason Allah becomes angry when you make somebody else besides Allah Rabb.
हक ताला ही रब है. इस दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा मश्क है.
This is the mush, the whole practice in the whole world.
इसलिए कि इस दुनिया में चीजें फैली हुई हैं और पीछे का हाथ नजर नहीं आता.
The dunya things are spread, but nobody sees the hands which are doing it.
इसी वजह से इस दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले सवाल यही होगा, इसकी मश्क हुई थी क्या नहीं हुई थी.
The first question which will be asked once when a person leaves this place is about this rububiyyat.
क्योंकि ये सवाल बहुत मुश्किल है और जवाब भी बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका सवाल और जवाब दोनों इस दुनिया में भेजने से पहले बता दिया गया.
Because the question is very difficult, the answer is also very difficult, so the question and answer has been told to us before we leave.
इसीलिए सबसे पहले अलस्तु बिरब्बिकुम का सवाल जवाब है.
So first thing was अलस्तु बिरब्बिकुम.
फिर दुनिया में आते ही इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह है.
So as soon as you came, Allah is saying इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह.
इस दुनिया से जाते ही इसलिए मन रब्बुका है.
So as soon as we leave, you have to. The first thing is, who's your sustainer?
इसका मतलब ये बना कि ये कोई अहम चीज है, इस पर मश्क की जरूरत है.
So it means that this is something very important which needs to be practiced.
इसका मतलब ये बना कि उसकी हमें मश्क नहीं है.
Which means that we have not yet reached that practice.
हमारे पास उसकी मारिफत तक नहीं है, तो मश्क कहाँ से रहती?
We don't even have the marifat, so how we can do the practice?
बहुत दूर हैं अभी इस चीज से.
We are very far away from it.
सबब पैसे नजर का हट जाना.
That eyes get away from the means.
चीज पैसे नजर का हट जाना.
The eyes gets away from the things.
چیز میں جو کچھ ہے اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظر آنا.
So in the thing only you see the greatness of Allah in that thing.
اس لیے ایک چیز ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ان میں اللہ کو خالق مالک دیکھنا.
So one is that everything which you see the greatness of Allah in there.
مالک کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے.
Nobody is owner except Allah.
اور ہماری ایک عجیب بیماری ہے.
There's a big disease with us.
جب بھی ہم چیز کا لفظ بولیں گے, جب بھی ہم کوئی اور چیز بولیں گے تو دوسرے کو سوچیں گے, اپنے کو نہیں سوچیں گے.
We say that whenever this thing is mentioned, the mind goes to somebody else, not to us.
ہم چیز ہیں کیا نہیں ہیں؟
Are we not something?
ہماری آنکھیں چیز ہیں.
Our eyes are also.
ہمارے کان.
Kan, eyes are also.
ہماری زبان.
Our tongue is also a thing.
ہمارے بال.
Our hair is also a thing.
ہمارے ہاتھ پیر.
Our hands and feet are also a thing.
ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن.
Our outside and inside is also a thing.
ہماری کھال, بال, خون, ہڈی, گوشت, سب کچھ, یہ سب چیزیں ہی ہیں.
All our skin, our blood, everything is also things.
اس میں خالق کون ہے؟
Who is the sustainer and creator?
اس کا مالک کون ہے؟
Who is the owner of this?
کیونکہ ہم نے پیدا نہیں کیا اس لیے بہت جلدی ہم مان لیتے ہیں کہ خالق اللہ ہے.
Because you know, we have not created, so we immediately says that creator is Allah.
لیکن چونکہ اپنی مرضی سے ہم ان چیزوں کو استعمال کرنے کے عادی ہو گئے اس لیے مالک اللہ ہے بولتے ہوئے شرم آتی ہے.
Because we are used to using these things as we want, so to say that this is the owner, we feel embarrassed saying it.
اسلام یہ ہے کہ آنکھوں کا مالک اللہ مان لے بندہ.
اسلام is a person needs to acknowledge that the owner of the eyes is Allah.
بلکہ ایک اور بات عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ مان لے اس بات کو.
The iman is to accept this fact.
اور اسلام یہ ہے کہ حوالے کر دے اللہ کو آنکھ.
And Islam is to give yourself to Allah.
نہیں, yourself نہیں, your eyes.
Your eyes to Allah.
جب میں اپنی آنکھ اللہ کو دے دوں گا تو پھر میری مرضی اس میں نہیں رہے گی.
Give my eyes to Allah, so my desire would not be there.
ایمان میں ماننا ہوتا ہے, اسلام میں کرنا ہوتا ہے.
Iman is to accept and Islam is to practice.
کان کو میں نے خالق مان لیا کہ اللہ اس کے خالق ہیں, مالک بھی اگر مان لیا میں نے کہ مالک اللہ پاک ہے, تو بہت بڑا کام ہو جاتا ہے میرے اور آپ کے بیچ میں.
So the ears, Allah is a creator, but if I also acknowledge that Allah is the owner of this also, so a big thing has been achieved.
ایسے میری زبان.
Same thing is the our tongue.
ایسا اسلام والا آدمی اپنی مرضی سے جو چاہے بولے, جو چاہے نہ بولے, نہیں کر سکتا.
A person of Islam, he cannot say what he wants to feel like saying it.
جو چاہے دیکھے, جو چاہے نہ دیکھے, یہ نہیں کر سکتا.
He cannot see what he feels like seeing.
جو چاہے سنے, جو چاہے نہ سنے, یہ نہیں کر سکتا.
He cannot, what he feels like listening, he, this is not what his attitude.
جو چاہے سوچے, جو چاہے نہ سوچے, یہ نہیں کر سکتا.
He cannot think what he wants to think.
خیال آنے میں تو اختیار نہیں ہے, لیکن سوچنے میں اختیار ہوتا ہے.
A thought coming is not into our minds, but to think is in our control.
ایسے کھانے پینے میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں.
Similarly, you know, eating and drinking and buying and selling, all of these things.
اسے آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کتنے دور ہیں.
You can imagine how far.
ہم سمجھتے ہیں کہ ربوبیت کی مشق ہو گئی شاید.
We think that our sustainership has been achieved.
بہت دنوں سے ہمارا چلا لگ رہا ہے, بہت دنوں سے ہم جماعت میں لگے ہوئے ہیں, ہماری ربوبیت کی مشق ہو گئی. یہ ہو سکتا ہے کسی کو خیال ہو, تو اس کا خیال ابھی پورا نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ ہوگا بھی ایسا.
So a lot of time we think that, you know, after all of this thing, you know, we think that spending so much for it is, so this practice has been achieved. There might be somebody. But this is what our thought is right now, that we have achieved these things.
Sari cheezon ka nazaron ke samne se hat jana.
So everything gets away from our eyes.
Aur apni zaat ka bhi hat jana.
And even from ourselves.
Hamari apni biwi bachchon par se bhi nazar ka hat jana.
Our eyes are removed from our children and family.
Hum samajh rahe hain ki bachche mere hain.
We think that this kids belongs to
me. Mere kahan se ho gaye bhai, tu na khaliq hai na malik hai, na rab hai na hakim hai.
How can these kids belong to you? You're not the owner, you're not the creator.
ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری بیوی ہے, ہم جیسے چاہے پھرا لیں اس کو. یہ میرے بچے ہیں, جیسے چاہے تربیت کر لوں گا, جہاں چاہے پڑھوا لوں گا, جیسے چاہے گروتھ کر لوں گا. میرا مکان ہے, جیسے چاہے بنا لوں گا. یہ میری گاڑی ہے, جدھر چاہے پھروں گا. یہ سارا مسئلہ مالکیت کی گڑبڑ کا ہے. مالک اللہ پاک ہوتے ہیں, ہر شے کے مالک اللہ پاک ہیں.
He is the owner of everything.
ہمارے بھی اور پوری کائنات کے ذرے ذرے کے بھی.
He is the owner of us and all the creation.
اور اسی وجہ سے حکم اللہ کا چلتا ہے ان چیزوں پر.
That's the reason only Allah's order is perceived on them.
خود ہمارے اوپر بھی یہی نظام ہے.
this is also on
apni marzi se paida nahi hue apni marzi se marenge nahi
because we have not been created by our own will and we will not die with our own will
apni marzi se jawan nahi hote apni marzi se marenge nahi
we don't get young by our own will and we don't die by our own will
apni marzi se tandurust nahi rehte apni marzi se bimar nahi hote
our own will we don't feel sick and our own will we don't get tired
garibi ameeri bhi usi hisab mein hai
similarly the wealth and poverty
khushi aur gham bhi isi hisab mein
hai happiness and sadness also the same
sare mamlaat aise hi hai mere bhai
so all of these things is the same thing
to cheezon mein allah tbarak wa taala ko khaliq malik dekhna
so you have to understand that in everything the sustainer and the creator and the owner is only allah
dusri cheez hai harkat
second thing is the movement
harkat ke andar fa'il allah hi hota hai
in the movement the mover is only allah
chahe kisi bhi cheez ki harkat
it is the movement of anything
har harkat ka fa'il allah hi hota hai
every movement the doer is only allah
इसी वजह से दावत में सबसे पहले जो बात कही जाती है वो ये कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है करने वाले माने फाइल करने वाला तो उसकी अरबी क्या है फाइल है इसी को जब अरबी में करते हैं तो उसका लफ्ज़ बनता है फाइल बोल तो वो अल्लाह ही होते हैं अब सवाल यहाँ ये होता है कि भाई जब चीज़ में खालिक मालिक अल्लाह हैं और हरकत में फाइल अल्लाह हैं तो फिर ये क्या है जो नज़र आता है
So when the ownership and the creation is also belongs to Allah and the movement is also done by Allah so what's going on right now
aur phir ye kya cheez hoti hai ki ye hamari gaadi hai ye hamare kapde hain ye hamare biwi hai ye hamare bacche hain ye kya cheez hai
so what is this that this is my wife my car my house my you know all of this what is all this
mere dosto isme ye baat hoti hai ki jo cheez aapke paas amanat rakhi gayi hai aur jisme aap masool hain yani aapse jiska jawab liya jana hai wo aapki taraf mansoob ki jati hai dusre se nahi hoga uska jawab
so thing which
masooliyat ki wajah se nisbat aapki taraf hoti hai
what the thing has been entrusted to you and the thing is has been given to you and entrusted to you so you are responsible for that that's why it's directed towards you
aapke bachchon ka sawal aapse hoga humse nahi hoga
so the question about your kids will be asked from you not from us
isliye wo bacche aapke qarar diye gaye
because these kids have been decided that they are for you
jo mere bacche hain unka sawal mujhse hoga
my kids have been asked Allah will ask about my kids
isliye wo mere bacche qarar diye gaye
because these kids have been belong to me
aise hi zameen hai property hai makan hai dukan hai saman hai cheeze hain
so the house and the property and the things and the house and the business everything the same way
sirf masooliyat ki wajah se nisbat hai
because of the responsibility this directive has been attained
masooliyat ko responsibility bolenge ya kuch aur bolenge allah pak puchhenge aur aapko uska jawab dena hai
because this you have been entrusted
accountable
you have been entrusted you have been entrusted with this that's why allah will ask you aapko masooliyat
accountability
entrusted hoga
acha
engagement you have been entrusted for this that's the reason Allah subhanahu wa ta'ala will ask you Allah who diya hua hai
yahi hal harkat ka bhi hai
same thing belongs to the movement
puri duniya mein jitni harkatein hoti hain usme har harkat ke khaliq Allah hi hote
hain any movement which moves the doer is only Allah
aur bande ki taraf jo nisbat hoti hai wo kasb ki aur ikhtiyar karne ki hoti hai
and what has been directed towards the individual this is the action which the individual does
yani kasab kamana zimmedari qubool karne ki wajah se wo kamata hai usko
so that's why he has accepted that responsibility
isko jaise kehte hain ki har harkat mein do nisbatein hoti hain
so in any movement there are two directives
ek nisbat uski allah ki taraf hoti hai
one is directed towards allah
aur ek nisbat uski makhlooq ki taraf hoti hai jahan se wo harkat zahir ho rahi hai
And the second is directed towards the creation from whom this movement is taking place.
Allah ki taraf jo nisbat hoti hai wo uske khaliq aur fa'il hone ki aisiyat se hoti hai.
So that directive which has been towards Allah subhanahu wa ta'ala as a owner.
Aur jo bande ki taraf nisbat hoti hai wo usko qubool karne ki wajah se hoti hai. Apni marzi se irade se qubool karta hai wo us cheez ko.
And the directive which has been towards the individual the reason is this individual has accepted this responsibility which has been entrusted by Allah to him that's why it's directed towards him
usko arabi mein kasab kehte hain
in arabic it's called kasab
laha ma kasabat wa alaiha maktasabat
so this is what Allah subhanahu wa ta'ala says that you which goes for you and against you also
تو میرے دوستو بھائیو، یہ جو پوری کی پوری مخلوقات کے اندر اشیاء کو محتاج دیکھنا اور اشیاء میں سے ظاہر ہونے والی حرکتوں کو، نفع کو، نقصان کو، عزت کو، ذلت کو، موت کو، حیات کو، تندرستی کو، بیماری کو، خوشی کو اور غم کو، راحت کو، تکلیف کو، ان سب چیزوں کو اللہ کی طرف گیر سے دیکھنا ہے.
So all the things which happens to the earth, you know, the happiness and the sadness and the enjoyment and the wealth and the poverty, you know, all the actions which are taking place, we have to understand that all of this is towards, directed towards Allah subhanahu wa ta'ala.
اس علم کا اتنا غلبہ ہونا،
سو دس شوڈ بی سو مچ آن اس، دس نالج شوڈ بی سو مچ اپون اس،
کہ آدمی اپنے آپ سے اللہ کو سرنڈر کر دے،
دیٹ ہی سرنڈرز ہمسیلف ٹو اللہ،
ایسا اپنے کو محتاج دیکھے بالکل،
ہی سیز ہمسیلف دیٹ ہی از، ہی ڈزنٹ ہیو اینی کنٹرول آن اٹ،
کس ہر چیز میں اور ہر سیکنڈ میں محتاج ہو، اور ہزاروں چیزوں کے اور ہزاروں لینوں سے محتاج ہو.
He feels that he is in need of Allah subhanahu wa ta'ala on every second.
اور نہ صرف خود اپنی ذات بلکہ پوری مخلوق.
Not only himself but the whole creation.
اور تو جب اس حقیقت کو دل قبول کر لیتا ہے، مان جاتا ہے دل اس بات کو، اس حقیقت کو، تو اس کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اس کے دل میں اترا.
So when this is accepted in the heart, then this means that la ilaha illallah has entered inside his heart.
اور جب یہ مفہوم دل میں اترنے کے بعد اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ایمان بنا.
So when this takes place inside the heart and it shrinks inside and it goes and sinks inside the heart, this means that this has entered into the heart.
یہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک سے چاہتے ہیں.
This is what Allah wants from every one of us.
اللہ پاک کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ میں اس بیس پر ہونے والا ہے.
Allah is going to deal with the individual in this subject, in this manner.
فرما فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور.
Allah is going to open up the hearts and check on this, on the chest.
ان ربهم بهم يومئذ لا خبير.
Allah knows what is going to happen inside.
اس لیے دعوت کی محنت میرے دوستو اس لیے ہے تاکہ اس حقیقت سے، کہ یہ حقیقت میرے اندر اتر جائے.
The effort of da'wah is that this reality sinks inside our hearts.
کیونکہ جب یہ چیز آتی ہے تو پھر دین کا، تو پھر ایمان بن جاتا ہے.
When this reality sinks inside the heart, the iman is done.
جب وہ بن جاتا ہے تو پھر دین کو لینا آسان ہو جاتا ہے.
So when the iman is completed, then to take the deen becomes easy.
مطلب اللہ کے ہر حکم کو لینا آسان ہو جاتا ہے.
Then to obey all the orders of Allah becomes easy.
جس لین کا جو بھی حکم آئے گا وہ دین ہوتا ہے.
Any type of orders of Allah comes, person will accept it.
ہم سب کی کامیابی دین پر چلنے میں ہے، یعنی حکم کو مان لینے میں ہے اللہ کے.
All of our success is in following the deen, which means following the orders of Allah.
جس لین کا بھی جو آرڈر آئے.
Whatever the order of Allah comes from any angle.
نماز روزے کا آ گئے تو نماز روزے کو قبول کرنا ہے.
Comes from the salat, the fasting, we have to accept it.
ماں باپ کے حقوق کا آ گیا تو اس کو قبول کرنا ہے.
Accept the rights of the parents, accept it.
بیوی بچوں کے حقوق آ گئے تو ان کو قبول کرنا ہے.
Rights of the kids and the family, accept it.
حلال کمانے کا آ گیا تو اس کو قبول کرنا ہے.
Getting the halal, so we have to accept it.
حرام سے بچنے کا آ گیا تو اس کو قبول کرنا ہے.
Stay away from the haram, we have to accept it.
محبت و نفرت کا حکم آ گیا تو اس کو قبول کرنا ہے.
The love and the hate, we have to accept that.
اس لیے کہ اپنی مرضی سے ہم ہر ایک سے محبت نہیں کر سکتے.
It's not up to us that whoever we want we can love.
اسلام صرف محبت ہی سکھاتا ہے، ایسا نہیں ہے.
Islam only teaches the love, this is not what it means.
صرف اللہ سے محبت سکھاتا ہے اور اللہ سے ریلیٹڈ کر کے محبت سکھاتا ہے اور ہر ایک سے نہیں سکھاتا.
Allah, Islam teaches that you love Allah subhanahu wa ta'ala and relative to Allah subhanahu wa ta'ala you love.
اور جو اللہ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا اس کی نفرت سکھاتا ہے. اس میں اپنی مرضی نہیں چل سکتی. ہم اپنی مرضی سے جس سے چاہے دشمنی کریں، اختلاف کریں، ہم اپنی مرضی سے جس سے چاہے دوستی
رکھیں.
اس لیے ایمان کے کمال کے لیے تو محبت اور نفرت کو بنیاد بنایا گیا ہے.
So the kamal and the, you know, the pinnacle of the iman, this love and the hate has been made as the objective.
من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان.
The one who loves Allah and the one who hates Allah becomes angry because of Allah, and the one who gives and the one who, you know, who holds, he is the one whose iman is complete.
ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اور نفرت کی کچھ بنیادیں ہیں.
So which means that there are certain directions for the love and the hate.
Deen ko lene ka matlab hota hai ki har hukum ko qubool kar lena.
To accept the deen means to accept all the orders of Allah.
Deen ki mehnat karna hai to deen ki mehnat ko qubool karna hai.
To do the effort of the deen, you have to accept the effort of the deen.
Uske liye khuruj karna hai to khuruj ko qubool karna hai.
We have to do the khuruj going in the path of Allah, we have to accept that.
Jaan o maal ko lagana hai to usko qubool karna hai.
We have to accept, you know, spending our money and time, we have to do it.
और इसमें जब आदमी के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह वाला ज़हन बन जाता है तो फिर हर छोटी बड़ी चीज चाहे उसकी मर्जी की हो या ना मर्जी की हो उस पर फर्क नहीं पड़ता उसको कबूल करने में.
So when this la ilaha illallah sinks inside the heart, then it doesn't matter whatever the order of Allah comes, he's going to accept it.
यह है वो फर्क खास हजरत सहाबा के मिजाज में और हमारे मिजाज में.
This is the difference between us and the sahaba.
उनका मिजाज बन गया था.
Because their nature has been completed this.
तो उसका नतीजा ये था कि जिस कंडीशन में जो हुकुम उनके लिए आता उसको कबूल करना उनके लिए आसान होता.
So that's the reason, if any order of Allah subhanahu wa ta'ala comes in any condition, they would accept it.
चाहे कितना ही सख्त मुजाहिदा होता तब भी.
No matter how difficult it looked.
और कितनी उनको आदत पड़ी हुई होती किसी चीज की तब भी.
No matter how much they were used to or something else.
हाँ. आदत जो है ना सब जानते हैं कि आदत को छोड़ना कितना मुश्किल होता है.
All know how much difficult it is to leave the habits.
और खास तौर पर शराब की आदत छोड़ना कितना मुश्किल होता है.
You can imagine how difficult it is to leave the habit of drinking.
जबकि सदियों से चली आ रही हो आदत वो खानदानों में चली आ रही हो.
Habit has been going on for centuries.
हजारों सैकड़ों किस्म की शराब घर में रखी हुई हो.
Different types of wines in the houses.
बस एक हुक्म आया कि ये नापाक है.
Order of Allah came that this is necessary.
उसी दिन समन बारिश के पानी की तरह पूरे मदीने में बह गई शराब.
So the whole wine was flowing like water in the streets of Medina Munawwara.
ऐसा भी नहीं हुआ कि 4-6 आदमियों ने छोड़ दी.
It's not that only
10-20 आदमियों ने छोड़ दी.
10-20 people left.
25-50 ने छोड़ दी.
20-30-40 people.
पूरी उस दिन शराब पूरी खाली हो पूरी शराब मदीना मुनव्वरा खाली हो गया शराब से उस दिन.
मदीना मुनव्वरा everybody left the broke the wines.
क्या चीज थी साहब ये?
What was that thing, my dear brothers?
तो तमाम चीजों में आपको ऐसे ही मिलेगा.
You will see everything.
औरतों को जब पर्दे का हुक्म आया
an order of Allah came for the women to veil.
तो रिवायतों में सीरत सहाबियात की सीरत में मिलता है कि एक खातून रास्ते से जा रही थी.
So it comes in the seerah that the woman walked.
किसी ने चलते हुए कहा कि आपको पता है कि पर्दे का हुक्म आ गया.
She was told that, you know, the order of veil has come down.
जैसे उन्होंने सुना वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई.
As soon as she heard it, she stood by the wall facing the wall.
कहेंगे मेरे घर से चादर ले आओ पहुंचा दो.
गेट मी अ शॉल फ्रॉम माय हाउस.
कैसी अजीब बात है. उनकी फहम इतनी सीधी थी कि उनको ये भी तफसील बताने की जरूरत नहीं थी कि पर्दे से क्या मुराद है.
सो यू कैन इमेजिन हाउ दे वर क्लोज टू अल्लाह दैट दे वर नॉट नीड टू बी एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द डिटेल्स ऑफ.
और ये तो अभी तो मैंने अभी सुना है अभी तो रास्ते में हूं यहां थोड़ी कुछ कर सकती हूं.
She didn't say, I just heard it. You know, I can't do nothing. So I better go home and then I'll see.
वहाँ बाद में जाके घर जाके मालूमात करेंगे.
We will
क्या
डिटेल्स
हैं इसकी?
We'll go home and we'll investigate about the order.
लोगों ने कहा भी कि आप चली जाएं अभी तो जब बाद में निकले तो फिर चादर में निकलना.
People said go home and then when you leave then you should wear the veil.
उन्होंने फरमाया कि नहीं अल्लाह का हुक्म यहाँ मैंने सुना है अपने घर तक बगैर हुक्म को छोड़े हुए कैसे जाऊंगी. बगैर हुक्म को पूरा किए हुए हुक्म छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी.
She said, I heard the order of Allah here, so how do I have this, how can I break the order of Allah from here to go to my home?
مخالفت کا اتنا بھی تحمل نہیں تھا ان میں.
They could not bear to go against the order of
Allah. جتنا ہم میں کرنے کا ہوتا اتنا مخالفت کا بھی نہیں ہوا.
The amount of desire which you have to do, you know, this is not even about the leaving that thing which Allah prohibited.
صحابہ کے بیان میں آتا ہے کہ جس دن پردے کا حکم نازل ہوا اس دن صبح میں مسجد نبوی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کووں سے بھر گئی ہے. کانہا غربان غربان کووں کو کہتے ہیں.
That when this order of Allah subhanahu wa ta'ala came about the veil, it looks, sahaba said that the Masjid Nabi was like ghirban, means like all the crows are there. This is how it looked, the sahabiyat, when they wore the veil.
لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کالے برکے کی کوئی وہ نہیں ہے شاید. نہیں وہ پہلے دن سے تھے وہ.
People, they say that this black veil is something made up of. It's actually coming from the initial day.
पहले दिन से है ये चीज़.
From the initial day, this day start, this veil started.
तो वहाँ मसला ये था कि मर्द हो कि औरत हो, खुदा का हुक्म जब आ गया तो मन नहीं मानना है.
over there this thing was there, if the order of Allah came, either it's male or female, they have to accept it, the following.
मेरे अंदर ये बात आ जाए, आप में ये बात आ जाए, हमारे बच्चों में ये बात आ जाए, सब में आए, तब अंदाजा लगाया जाएगा कि हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह के कुछ असरात आ रहे हैं.
When this thing comes into me and my family, then we will see that la ilaha illallah's effects are coming on us.
Allah maaf kare, hum logon ke andar to jo gadbad hai wo to kisi se chupne wali cheez hai nahi.
So may Allah forgives the gadbad ke kaatil.
एक बुजुर्ग ने फरमाया, उसे आप समझ लो कि क्या तर्जुमा हो सकता है. एक बुजुर्ग फरमाया कि बाहर से बायजीद अंदर से यजीद.
So he gave an example. He said that like one elder was saying, one Bustami was saying that from outside he's Bayezid, a very famous
Bayezid Bustami Ramtulal, a
very pious man, Bayezid. And from inside, he's Yazid, you know, a very big nuisance character.
ये क्यों है मेरे दोस्तों? जितने इखलास के साथ हमें दीन की मेहनत में लगना था, उसमें कमी हो रही है.
The reason is, my dear respecters, because of our lack of sincerity, things happen.
और जितनी तलब से लगना था अपनी इस्लाह के लिए, उसमें कमी है.
And the amount of desire which we would have showed to Allah, that's lacking.
मौके मौके से पुरानों का मशवरा भी इसलिए किया जाता है, मुख्तलिफ जगहों से साथियों को बुलाया भी इसलिए जाता है कि इस तरह के मुजाकरे हम करें और ताकि हमारी तलब में सच्चाई आ जाए.
And the reason why the brothers, old workers, have been called upon, these kind of talks are given, so that our desire becomes rectified and purified.
कि जितनी सच्ची तलब होगी, उतने मुझे अपनी इस्लाह की फिक्र हो जाएगी.
Because the more a person's desire is pure, the more he will be worried about fixing himself.
Hazrat Maulana Inamul Hasan sahab rahmatullah alayh ek martaba bayan mein farma rahe the puranon ke, ki bhai mujhe aapki hidayat ki fikr hai, aapko meri hidayat ki fikr hai, isliye kisi ko bhi nahi mil rahi.
So once Maulana Inamul Hasan sahab rahmatullah alayh said, you know, we are worried that you should, you know, I'm worried that you should get the hidayah. You are worried that I should get the hidayah, so nobody is getting the hidayah.
क्यों? इस वास्ते कि इस पर कोई वादा नहीं है अल्लाह का.
There is no promise of Allah on this.
अल्लाह का वादा तो ये है कि जो अपने लिए करेगा, उसको हम हिदायत देंगे. वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना. जो अपने लिए मेहनत करेगा, उसको हिदायत मिलेगी.
Because the promise of Allah is the one who is worried about himself. वल्लज़ीना जाहदू फीना. Then Allah Subhanahu wa Taala is going to give him the hidayah. Then he's going to get the hidayah.
इसलिए दावत की अहमियत को समझना है और अपनी जात को सामने रख के समझना है पहले.
You have to understand the importance of the work of Dawat-e-Allah and putting ourselves in front.
हम दोनों चीजों को जमा नहीं कर पा रहे हैं.
We cannot, we are unable to join these two things together.
अगर अपनी इस्लाह को सामने रख रहे हैं तो दावत की अहमियत को छोड़ दे रहे हैं, दावत की अहमियत को सामने रख रहे हैं तो अपनी इस्लाह को सामने रखना भूल जा रहे हैं.
So the initial thing is that if we are worried that we need to fix ourselves, so we are neglecting the other part, which is the Dawat-e-Allah. And if we are worried about doing the work of Dawat-e-Allah Subhanahu wa Taala, then we are neglecting ourselves, that we need to fix ourselves up also.
इसलिए हमारे बड़े ये फरमा रहे हैं कि भाई मेहनत तो पूरी करनी है, लेकिन जात अपने सामने रहनी है.
So our elders are saying that we need to do complete effort, but putting ourselves in front.
और उसके साथ साथ सारे आलम को भी अपने निगाहों में रखना है.
At the same time, we have to put the whole humanity in front of us.
पूरे आलम में दावत के काम की जितनी जरूरत है, उतना बर्डन मेरे ऊपर आना है.
So the amount of da'wah which is required in the whole world, the whole effort should be on my back.
आप अंदाजा करें कि हमारा अपना ये हाल है, अल्लाह ने कुछ दिनों से लगाया हुआ है, तो जिनके पास कभी अल्लाह रसूल का नाम ही नहीं आया, उनका क्या हाल होगा उन मुसलमान भाइयों का?
So my dear respectful, you can imagine that we are to somewhat attached, and this is our condition. So imagine those Muslim brothers who have not heard this thing, what would be their condition?
हजारों, लाखों, करोड़ों बंदगाने खुदा मुसलमान हैं, लेकिन वो अल्लाह रसूल को एकदम भूले हुए हैं और खालिकियत और मालिकियत और ला इलाहा इल्लल्लाह के मज़ामीन को एकदम भूले हुए हैं.
There are millions and hundreds and thousands of people who are detached and they have completely forgotten Allah Subhanahu wa Taala and the ownership and the creator and the sustainer. All of these facts are, you know, nullified from their minds.
जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में नहीं आता, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह भी समझ में नहीं आता, वो उसके साथ अटैच है.
जब उम्मत
ला इलाहा इल्लल्लाह को भूली हुई है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहां से याद रखेगी?
So who is not understanding La ilaha illallah, how can they even understand Muhammad Rasulullah?
Muhammad Rasulullah ka number jab aata hai ki jab aadmi ye kahe ki maine La ilaha illallah samajh liya, ab aap batao ki mujhe apni aankhon ka istemal kaisa karna hai, kaano ka istemal kaise karna hai, zuban ka istemal kaise karna hai, jaan maal ka istemal kaise karna hai, biwi bachon ke sath kaisa bartao karna hai, kya huquq hain, tab Muhammad Rasulullah ka number aata hai.
So the one who first understands La ilaha illallah, now how I need to use my eyes, how I need to use my tongue, how I need to use my ears, how I need to use my family, how I need to go, then the Muhammad Rasulullah will come.
So isliye mere dosto puri duniya ki insaniyat to hai aur puri duniya ke musalmanon ko samne rakhkar hum zarurat ka andaaza karein ki aakhir kitna mujhe safar karna padega aur kitna mujhe jaan o maal Allah ke liye lagana hoga taaki har bhai ke paas har behan tak ye paigham pahunche jo Allah pak ka hai aur mere zimme Allah ne lagaya hua.
So keeping this in mind, my dearest friend brothers, imagine the amount of tremendous and humongous responsibility which has been given to us so that we can go and reach to each every corner of the earth to deliver this message.
और जब ये हकीकत उतरेगी दिलों के अंदर तो फिर कबूल करना आसान होगा वरना नहीं होगा, इसलिए इसकी अहमियत अपनी जगह है.
When this reality would sink, then it will be able to accept it.
क्योंकि अगर हम खाली दीन की लाइन का इंफॉर्मेशन पहुंचा दें तो फिर लोग उससे कोई फायदा नहीं उठाएगा. फायदा उठाने के वास्ते अंदर ये इस्तेदाद चाहिए.
Just to deliver the message, people would not be able to accept it unless the reality is inside.
उसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है.
So we need to make an effort on that.
इसलिए दावत की हकीकत में यह बात शामिल है कि आदमी जाए मदहु के पास.
So this is the reality of the dawah, that a person needs to go, the da'i needs to go to the one who is giving dawah.
क्योंकि उसमें शफकत चाहिए.
Because he needs to be, you know, lovable to that individual.
उसमें असर बात में बात को मुअसर बनाने की कोशिश चाहिए.
That he needs to be effective to the individual.
उसमें खुलूस चाहिए.
Needs to be sincere with the individual.
उसमें हिकमत चाहिए.
Needs to be wise and wisdom.
उसमें मौका महल देखना होता है.
Needs to see the time and the frame.
तो कौन सा बंदा है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है.
So which person is correct and how he needs to talk to him.
और फिर यह है कि एक मर्तबा काफी नहीं होता कि मैसेज दे दिया, नहीं, उसमें बार बार आदमी को पहुंचना होता है.
It's not that he talked to him once, he needs to go there again and again.
ताकि उसके दिल में बात आ जाए.
That this thing can sink into this.
किसी के दिल में बात आ जाने के वास्ते अब बहुत से असबाब जमा होना होता है जो दाई के पहुंचने पर ही मुताहकक हो सकता है.
So this reality can sink inside the heart. This many things need to be synchronized. So when the dai reaches over there, so all of these things get synchronized.
इसलिए बड़े ये फरमा रहे हैं कि दावत की हकीकत जब भी मुताहकक होगी, जब दाई मधु के पास जाएगा.
The effects will come when the da'i, the one who is giving da'wah, will go to the person who is giving da'wah to.
कभी ऐसा भी हो सकता है exceptionally के इसके बगैर भी किसी को फायदा हो जाए, मैसेज से भी फायदा हो जाए, बगैर मैसेज के भी फायदा हो जाए, ख्वाब पढ़ के फायदा हो जाए, ऐसा भी हो जाता है.
Sometimes it is possible that a person, you know, without the message or, you know, with the message or by the dream, anything is, this is, things are also possible.
आम फायदा नहीं होता वो.
This is not the general rule.
हाँ, फायदा ये होगा कि हर मुसलमान को जो दीन की तलब रखता है उसको दीन की मेहनत करनी पड़ेगी.
So the thing is that the general rule is that a person has to make an effort.
इसी वजह से मेरे दोस्तों इसके फजाइल हैं.
There's the reason there are so many benefits of this.
कितने फजाइल माशाल्लाह अल्लाह के दीन की मेहनत के हैं.
How many virtues are there to do the effort of this?
कुरान पाक भरा हुआ है.
The whole Quran is filled up.
अहदीस मुबारका भरे हुए हैं.
अहदीस are filled up.
ताकि उम्मत को इसका इतना अहमियत भी समझ में आ जाए, जरूरत भी समझ में आ जाए, और अगर ये दोनों चीजें उतनी समझ में नहीं आई तो फजीलत को देख के शौक हो जाए.
The person can understand the importance and the need, or if he cannot, you know, the least minimum thing is this, at least by understanding the virtue he should be able to
do. फजीलत के जरिए से अल्लाह पाक ये बताना चाहते हैं कि ये अमल मेरे नजदीक कितना महबूब है.
By seeing the virtues, Allah wants to tell us that how bad beloved this amal is in front of you.
Kyunki jitna zyada pasandida hota hai Allah ko utna uska sawab rakhte hain.
So the more it is beloved to Allah, Allah puts more reward into it.
Itna zyada Quran aur hadith mein iske fazail bayan kiye gaye, iska matlab ye hai ki Allah ko ye bahut hi zyada pasand hai.
So many fazail has been said in the Quran hadith, which means that Allah loves this extremely.
Aur Allah ko bahut hi zyada isliye pasand hai ki Allah ke makhlooq iski bahut hi zarurmand hai.
The reason is this, because Allah's creation is in need of this very much.
aur Allah ke makhlooq ko isse bahut fayda hota hai.
And Allah's creation benefits a lot.
aur sari duniya mere dosto iska mushahida kar rahi hai.
Already the whole world is, you know, watching.
ki apni in kamzoriyon ke bawajood, apne naqais ke bawajood, hame aata hi kya hai, hum hain kya, kuch bhi nahi hote, phir bhi Allah pak puri duniya mein iske asraat mushahida kara raha hai.
Even with our deficiencies and our weaknesses, with our weak you know, characters, you can see how much Allah subhanahu wa ta'ala is spreading all over the world.
इसलिए हम में से हर साथी को मेरे दोस्तों इस एतबार से गौर फिक्र करने की जरूरत है.
So for this, my dear respected brothers, all of us need to ponder on this.
और गौर फिक्र तो हम करते रहते हैं. और सुनते सुनाते भी रहते हैं.
We've been hearing this.
हम जो गड़बड़ करते हैं वो ये कि अपना ज़हन नहीं बनाते.
Main thing is this, we don't you know, cultivate our mind.
इरादा नहीं करते.
We don't make the intention.
तय नहीं करते.
We don't decide.
फैसले से काम नहीं लेते जो अल्लाह ने एक बहैसियत मर्द होने के हमारे अंदर रखा है.
You don't take a decision the way as a man has to take a decision.
अल्लाह पाक ने फैसला मर्द के हाथ में रखा है.
Allah has put the decision in the hands of men.
और फैसले की कुव्वत हमारे अंदर है, इसीलिए हमें जिम्मेदार बनाया गया है.
And because we have the power to take a decision, that's the reason we have been made responsible.
बच्चे में फैसले की कुव्वत नहीं होती, इसलिए वो जिम्मेदार नहीं होता.
A kid does not have the capacity to take a decision, that's why he's not responsible.
पागल में फैसले की कुव्वत नहीं होती, इसलिए उसको जिम्मेदार नहीं बनाया गया.
A lunatic does not have the capacity to take a decision, that's why he's not responsible.
हम फैसला नहीं कर रहे हैं तो हम क्या हैं?
If you are not taking decision, what we are?
क्योंकि दो ही मखलूक को बताया गया कि ये फैसले नहीं करने वाले हैं.
Only two
decision नहीं ले सकते बल्कि या तो बच्चा होना या पागल होना.
Either he's a kid or he's a lunatic.
और हम भी नहीं ले रहे फैसला.
And we are also not taking decision.
तो हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई?
So what we are doing?
तो ऐसा नहीं करना है मुझे और आपको. आप फौरी जिससे निकलोगे यार ना मैं बच्चा हूँ ना मैं पागल हूँ.
So we should decide we are not a kid and we are not lunatics.
हम तो ये फैसला करना है मेरे दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रब हैं, अल्लाह की रुबूबियत ही का यकीन मेरे अंदर पैदा करना है और अल्लाह की रुबूबियत पे भरोसा करके मुझे फैसला करना है कि मुझे सारी दुनिया में सफर करना है अल्लाह के वास्ते.
So believing in Allah subhanahu wa ta'ala, believing in the rububiyyah, the sustainership of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to move all over the world to do this work.
और असबाब को नहीं देखना है.
And we'll not look at the means.
क्या मेरे पास काम करने के लिए असबाब है क्या नहीं है?
We'll not see whether we have the means or not.
क्योंकि फैसला करने के लिए असबाब को देखो बल्कि नहीं है.
Because we have not been told to look at the means when you decide.
घर वालों का इंतजाम है क्या नहीं है, मैनेज करने का वगैरह के जो जिम्मेदारियां है वो अलग चीज है, फैसला करना अलग चीज है.
The actual how it is going to be done, that's a different thing, but the decision is something else.
फैसला करने के लिए अल्लाह पर नजर होना है.
Making a decision, the person has to believe only and put his eyes glance on Allah.
हाँ, अपनी आँखों के सामने से असबाब को हटाना है.
Remove the means from our eyes.
अल्लाह ही करते हैं लेकिन असबाब से करते हैं, ये भी गलत है.
This is also wrong that a person says that only Allah does it, but through the means.
अल्लाह पाक असबाब के मोहताज है ही नहीं.
Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of
असबाब से असबाब अल्लाह ही करते हैं लेकिन असबाब से ही करते हैं बोलना ये हमारी खुसूसियत नहीं है. ये तो मुशरिकीन भी कहा करते थे, ये बात तो कह रहे हैं हमारे बड़े.
The person is saying that Allah does it, but through the means. This is what the mushrikeen also used to say. This is what our elders used to say.
ईमान वाला ये कहता है कि असबाब हो या ना हो, असबाब से भी अल्लाह ही करता है, असबाब के बगैर भी अल्लाह ही करता है.
With the means Allah does, without the means also Allah does.
कम असबाब हो तब भी अल्लाह ही करता है.
Little means only Allah does.
ज्यादा असबाब हो तब भी अल्लाह ही करता है.
Means only still Allah.
करने वाले ज़ात सिर्फ अल्लाह की है.
Doer is only Allah.
तो अल्लाह के करने पे भरोसा करके अपनी रुबूबियत का यकीन उन पर ला के हमें फैसला करना होता है.
So having 100% yakin Allah subhanahu wa ta'ala, we have to take the decision.
इरादा बनाना होता है.
To make the intention.
और ये इरादा अल्लाह के साथ बनता है.
And this is dealing with Allah.
इजहार तो सिर्फ जिम्मेदारों के सामने इजहार होता है, बनता अल्लाह के साथ है इरादा ही.
The saying is actually saying in front of the brothers, but actually this intention is between you and Allah.
और जब अल्लाह पाक से मांगा जाता है कि अल्लाह पाक मैं चाहता हूँ मुझे आप करवा दें, मेरी नीयत है आप मुझे दे दें, अल्लाह पाक ऐसे रास्ते बनाते हैं मेरे दोस्तों जिसका अंदाजा नहीं कर सकते.
So the person makes the correct intention, so Allah subhanahu wa ta'ala makes means which we cannot even comprehend.
हजारों लोग हैं जिनसे आप हालात पूछेंगे तो वो बता देंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं था फिर भी वो चार महीने लगा के आ गए, कुछ भी नहीं था फिर भी चिल्ला वो लगा के आ गए, कुछ भी नहीं था फिर भी बेरून के असफार होके आ गए. आपको हजारों से भी ज्यादा मिलेंगे ऐसे लोग.
You'll find thousands of people, they say we have no money, nothing, and we've been able to go out in the path of Allah. We had nothing, we went out for months, we had nothing, we did this, suffer. Many thousands of people you'll find them.
ये पूरी दुनिया का निजाम ही मेरे दोस्तों ऐसा है. अल्लाह ने फरमाया कि अगर तू मेरे पे भरोसा करेगा तो मैं अगर तुझे बस नहीं हुआ तो फिर कौन बस हो सकता है.
So if you trust on me, then if I'm not sufficient for you, then who else will be there?
Alayhi sallahu bi kafin abda, kya Allah paak Allah apne bande ko bas nahi hai, Allah paak farma rahe hain.
Isn't Allah subhanahu wa ta'ala sufficient for individual?
Man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh.
A person has trust in Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala takes care of
him. Inna Allah balighu amri.
Allah fulfills the needs.
हाँ, अपने अपने फैसले को बराबर पहुंचता है, वो कैसे पहुंचेगा वो जानता है.
And only Allah knows how that deal will take place.
अगर उन्होंने कबूल कर लिया कि इस बंदे से ये काम लेना है, उनके लिए कुछ मुश्किल है?
If he has decided that he needs to do this effort from this individual, is it difficult for Allah?
वो जर्रे को आफ्ताब बना दें.
He can make an atom.
वो नाकिस से बड़े से बड़ा काम ले लें.
He can make some poor person in a big amal.
छोटी छोटी मखलूक से हाथियों के लश्कर को बर्बाद कर दें.
From very feeble creation, he can destroy the, elephants.
मेरे दोस्त सिर्फ उनका इरादा करना है.
Only he has to decide.
और वो इरादा फरमा लेते हैं जब बंदा आजीज बन के उनसे मांगता है.
Allah subhanahu wa ta'ala decides and a person is very submissive to Allah and asks.
तो हम इरादा करें मेरे दोस्तों, फिर देखें अल्लाह पाक कैसे रास्ते निकालते हैं.
So once when we make an intention, we will ask Allah to how Allah will.
इसलिए हम ये तय करें कि सारे आलम में हम सफर करेंगे अल्लाह के दीन के लिए इंशाअल्लाह. सब तैयार है इंशाअल्लाह. अल्लाह के ज़ाते आली पे भरोसा करके हम सब इरादे करें, नाम लिखाएं, फिर जैसे जैसे तदाबीर हमारे सामने शक्लें आएंगी, तकाजे आएंगे, तरतीब बनी जाएगी. अल्लाह पाक कबूल फरमाए. आसान.